ओम शांति। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 1973। लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ देख नहीं सकता, तो अभी तुम भी मास्टर रचयिता होना अथवा यह बाप का ही काम है या आपका भी है? जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख के विलाप व तड़पन को कभी देख नहीं सकेंगे। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे और जो कमाया उसे खाते और खत्म करते रहेंगे, तो उन्हें देंगे क्या? अब अपने पोतामेल को देखना है। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोतामेल देखना है? क्या क्या गलती की है यह तो कौन सा पोतामेल है? यह तो पुराना और बचपन का। और क्या क्या गलती की है ये चेक करना, ये कौन सी बात है? छोटे बच्चों का काम है। और शुरू का काम है, पहले का। और क्या क्या गलती की है? मैं मैंने कहा यह तो बचपन का पोता मेल है, लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा चार्ट चेक करना है? आप हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोतामेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की। अभी जमा के खाते का पोतामेल देखना है, खर्चे को फुल स्टॉप देना है। अब तक भी अपने प्रति खर्चा करते रहेंगे क्या? दूसरों को देना यह खर्चा नहीं है, वह तो एक देना फिर लाख पाना है। वह खर्चे के खाते में नहीं, वह जमा के खाते में हुआ। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो, तो वह होता है खर्च। जब कोई भी विघ्न पड़ता है, तो उसको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो या जो ज्ञान धन को खर्च करते हो, तो इतना सभी खर्चा अभी से बचाना पड़े। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 1973। बाबा कह रहे लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ नहीं देख सकता, तो आप सभी हो मास्टर रचयिता अथवा यह बाप का ही काम है या आपका भी है? जब आप लोग भी अपने भी सभी मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख के विलाप तड़पन को कभी देख नहीं सकेंगे। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे और जो कमाया उसे खाते और खत्म करते रहेंगे, तो उन्हें देंगे क्या? अब अपने पोतामेल को देखना है। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोतामेल देखना है? यहाँ बहुत सारी क्या क्या जमा कितना किया और खर्चा कितना किया। तो मास्टर रचयिता जो है, उनके क्या कर्तव्य है? सबसे पहला तो ये प्रश्न है। यहाँ पर बहुत सारी बातें बाबा ने कही है। मास्टर रचयिता जो है वो क्या नहीं देख सकते? दुख और विलाप, तड़पन आत्माओं की देख नहीं सकते। ये केवल आपका ही बाप का ही काम है या आपका काम है? तो लौकिक में भी यदि कोई हद का रचयिता है, पिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ नहीं देख सकता, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? स्टॉक जमा चाहिए। इसके लिए फिर पोतामेल को देखना है। तो फिर वो कौन सा पोतामेल है, ये आगे की बात है। तो सबसे पहली बात है कि जो मास्टर रचयिता है, जैसे हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी नहीं देख सकता, वैसे ही मास्टर रचयिता भी अपनी रचना को दुखी तड़पता हुआ विलाप करता हुआ प्रलाप करता हुआ नहीं देख सकता। महात्मा बुद्ध के जीवन में बताया जाता है तो जो शाखाएं हैं बुद्धिज्म की उसमें से एक शाखा में यह मान्यता है कि महात्मा बुद्ध ने जब शरीर छोड़ा और वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल ने उनका स्वागत किया कि आइए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। जब तक इस संसार की हर आत्मा दुख से मुक्त नहीं हो जाती, हर आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती, मैं अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। दो चीजें बताई है हर धर्मों में इस तरह की। एक तो कुछ आत्माएं होती है वो संपूर्णता को प्राप्त होती है और चली जाती है, कुछ आत्माएं होती है संपूर्णता को प्राप्त होती है फिर भी रुकती है संसार में, किस लिए? दूसरों का कल्याण करने के लिए। जैसे जैन धर्म में जो उनके रीति से संपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य पद की अधिकारी आत्माएं वो वहां पहुंच जाती है। परंतु कुछ आत्मा उस पद को प्राप्त करने के बाद भी संसार में रुकती है, उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। ऐसे 24 तीर्थंकर है, महावीर अंतिम तीर्थंकर। तो उस पद को पा लिया उनके रीति से संपूर्णता को या कैवल्य को, परंतु उसके बाद भी जो संसार की आत्माएं हैं वो दुखी है, विलाप कर रही है, तड़प रही है, भटक रही है, उनके कल्याणार्थ संसार में रुकते हैं, अपने देह को बचा कर रखते हैं उनके कल्याणार्थ, तो उन्हें कहा गया है तीर्थंकर। उसी तरह बुद्ध धर्म में जो आत्माएं संपूर्णता को प्राप्त हो जाती है उन्हें अरहत कहा जाता है। अरहंत, अरहंत नहीं, अरहत, अरहत, अरहंत नहीं। अरहंत तो कैटेगरी से टीचर्स की उपाध्याय, अरहंत, अवधूत, आचार्य और साधु, ये 5 प्रकार के टीचर्स है, वो अलग। सिद्ध एक है, एक है अवधूत, एक है अरहंत, सिद्ध, उपाध्याय और सन्यासी, ये 5 प्रकार के टीचर्स है भारत की संस्कृति में। अरहत और जो संपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, निर्वाण को, निर्वाण अर्थात निर्वाण का क्या अर्थ है? ये तो बाबा ने शब्दों सहित अर्थ बताया है, जैसे नेमिनाथ अर्थात जो नियम का पालन करते हैं, ये शब्दों के अर्थ है। निर्वाण अर्थात दिए का बुझ जाना, वहां कुछ नहीं रहता है, दिया बुझ जाए उसको बौद्ध धर्म ने निर्वाण कहा है। जहां कोई दिया जल रहा है बुझ गया, अब कुछ नहीं रहा, समाप्त हो गया। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ, जो शब्द है उसका अर्थ होता है बुझ जाना, एक्सटिंग्यूशिंग ऑफ अ लैंप अर्थात निर्वाण। बाकी बाबा ने फिर अर्थ दूसरे जोड़े हैं, निर्वाण अर्थात वाणी और उससे परे निकल जाना, वो निर्वाण। एक तो वो है जो पा गए, दूसरी आत्मा है जो संसार में रहती है, उन्हें कहा बोधिसत्व। वो बोधिसत्व है जिन्होंने बुद्ध स्थिति को प्राप्त किया। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो स्थिति है, बुद्धाहुड कहा जाता है। तो बुद्धाहुड को जिन्होंने प्राप्त किया, उस बुद्धत्व को जिन्होंने प्राप्त किया, उस संबोधि को जिन्होंने प्राप्त किया, उन्हें कहा जाता है बोधिसत्व। तो वो बोधिसत्व रुकते हैं संसार में, संसार के कल्याण के लिए। और जो वो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं, वो उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, अपना कल्याण हो गया, चलो निकलो आगे की यात्रा में। उनके इसमें तो ऐसा ही है ना कि जन्म मरण का चक्र समाप्त, पर जन्म तो सबको लेना है, वो दूसरी बात है। पर उनका कहना है कि जन्म पूरे हो जाते हैं, खत्म, उसके बाद ये आत्माएं जन्म नहीं लेती है। परंतु बुद्ध ने फिर भी कहा है, मैं फिर आऊंगा। बुद्ध ने कहा था, क्राइस्ट ने भी कहा था, मैं फिर आऊंगा, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। तो यहां हम बात कर रहे हैं मास्टर रचयिता की। मास्टर रचयिता अर्थात जो संसार में रुकते हैं, इधर रुकते हैं, किस लिए? कल्याण के लिए। नहीं तो यदि एक हमेशा प्रश्न पूछा गया है, भक्तों की तीव्रता बहुत ज्यादा क्यों होती है और हम लोगों की तीव्रता कम क्यों है? भक्त जो है भगवान न मिले तो गला काट देते हैं, इतनी तीव्रता कहां से आ गई? एक सन्यासी की कितनी कठोर साधना करता है, कठोर तपस्या करता है। ये जैन साध्विया देखो यहां घूमते हुए दिखते हैं आबू में, कितना कठोर जीवन है, चप्पल नहीं है, बीमारी में दवाई नहीं लेंगे, बहुत सारी पढ़ी लिखी है उसमें, परंतु स्ट्रिक्ट है और यंग है सारे। तो इतनी कठोर और उतनी साधना में इतनी तीव्रता, कारण क्या है कि ब्राह्मणों में वो तीव्रता नहीं है? और वो तो है, वो तो एक कारण। असली को जान लिया, आराम से अभी लेट के आराम करो, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो स्व पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके इसमें सेवा नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, सेवा कोई सब्जेक्ट नहीं है, उनका सारा पुरुषार्थ स्व के प्रति ज्यादा है। और जो विश्व का आत्मानो पुरुषार्थम जगत तृतीयाय च हितेयाय च, जो जगत का हित करना है वो कर रहे हैं, परंतु वो अलग रीति से कर रहे हैं, वही शास्त्रों की बातें सुनाना, पर उसमें भी मुख्य उनका लक्ष्य है आत्मानो मोक्षार्थम, आत्मा को मोक्ष मिल जाए, ये लक्ष्य है। हमारा पुरुषार्थ जो है उसमें सेवा नाम का एक सब्जेक्ट है, और वो सेवा की वजह से हम बाह्यमुखी है, या फिर हम थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, हम थोड़ा उसका विस्तार कर रहे हैं, हम आत्माओं के संपर्क में आ रहे हैं। अगर हमको कहा जाए कि आज से ऐसा नियम है कि सब ने बैठकर केवल तपस्या करनी है, कुछ नहीं करना है, ना तो सेवा करनी है, कुछ नहीं, सेवा करनी ही नहीं है तुमको, केवल खाना है और सेवा करना है, अपना तपस्या करनी है, बस मौन धारण कर लेना है, बोलना नहीं है, बोलने से हमारी बहुत सारी एनर्जी जा रही है दिन भर में, चाहे न चाहे, चाहते हुए न चाहते हुए। अगर ऐसा नियम बना दिया जाए कि एक महीने तक केवल सुबह से लेकर रात तक अपनी पढ़ाई करो और तपस्या करो, पढ़ाई करो और तपस्या करो, सेवा कुछ नहीं करनी है, वो दूसरी बात है। हम कह रहे हैं ये कि ये नहीं कह रहे हैं कि सेवा नहीं करो, पर हम कह रहे हैं कि सेवा जो है उसमें हम बहुत बाहर जा रहे हैं। वो अलग चीज है कि सेवा भी हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाती है या दुआएं मिलती है, वो सारी चीजें है, परंतु ये हमारा भाव है कि हमें विश्व कल्याण करना है, हम ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचे जाएंगे कि हमें विश्व कल्याण करना है। तो क्योंकि फिर से यही बात आती है, मास्टर रचयिता है, जो बुद्ध ने कहा था कि सबका कल्याण जब तक नहीं होता है तब तक मैं नहीं जाऊंगा, वो कह रहे हैं कि आपकी साधना पूरी हो गई, आपका निर्वाण आप प्राप्त हो गए, वो कहता है नहीं जाऊंगा, एक एक आत्मा को जब तक सुखी नहीं देख लेता, एक एक आत्मा को जब तक कल्याण नहीं कर लेता तब तक। तो ये भाव है, नहीं तो उनका क्या, काम पूरा हुआ चल दो, वो मार्ग नहीं है। इसके लिए ये जो कहा गया है इसके लिए सेवा है, और ये भाव खींचता है आत्मा को कि विश्व का कल्याण करो, विश्व का कल्याण करो, विश्व का कल्याण करो। तो तुम भी मास्टर रचयिता हो ना, तो हम सभी जैसे वहां पर अरहत नहीं बोधिसत्व, कैवल्य नहीं तीर्थंकर, तो तुम भी मास्टर रचयिता हो ना। अथवा यह बाप का ही काम है या आपका भी है? बाप को भी क्या काम, नीचे आए किसी स्तन का प्रवेश करे और फिर सुनाए, क्यों? उसको भी, उसका भी नाम है विश्व कल्याणकारी, वो नाम सिद्ध नहीं होगा जब तक वो कर्तव्य करके नहीं दिखाएगा। उसे महान माना गया है ना, तो उसे दिखाना पड़ेगा करके कि मैं महान हूं। हमें भी महान समझा गया, हमारी पूजा हुई है ऐसी फुकट में, मुफ्त में पूजा, द्वापर से अब तक पूजा हो रही है मंदिरों में, क्यों? कुछ तो किया है हमने। महान तीर्थंकर कौन है? हम ही वो तीर्थंकर है, हम ही वो बोधिसत्व है, हम ही वो इमाम, हम ही वो पैगंबर पयंबर, हम ही वो शंकराचार्य, हम ही है वो सब, हम ही वो है जिन्होंने इस हिंदू धर्म की रक्षा की थी, धर्म की रक्षा की थी, सनातन धर्म की रक्षा की थी। वो सारे कर्तव्य जो कहे गए हैं, हम ही है वो सारे पोप तथा कथित, एक रीति से इस कौन से पोप, उस क्रिश्चियनिटी के पोप नहीं, इस आदि सनातन धर्म के पोप, हम ही है वो मैसेंजर्स, हम ही है वो मसीहा, मसीहा होते हैं ना, मसीहा आते हैं, हम ही है वो उद्धारक, रिडीमर, लिबरेटर, मसीहा, हम ही है वो अवतार। हिंदू धर्म अवतार कहती है, इस्लाम इमाम या पैगंबर पयंबर कहती है, क्रिश्चियनिटी मैसेंजर ऑफ गॉड कहती है, बौद्धिज्म बोधिसत्व कहते हैं, जैन तीर्थंकर कहते हैं, हिंदू धर्म अवतार कहते हैं, हर इसमें अलग अलग है। ये सारे वो लोग हैं क्रिश्चियनिटी में मसीहा, मुस्लिम में तो पैगंबर पयंबर इमाम, ये सारे उनके अलग अलग शब्द है, खलीफा खलीफेट्स, तो ये उनके अलग अलग उधर साइड। क्रिश्चियनिटी में एक तो सबसे मुख्य क्राइस्ट, पर वो चाइल्ड है, उसके बाद में सारे मैसेंजर्स है, प्रोफेट्स, इस्लाम में प्रोफेट्स कहा जाता है, मैसेंजर कहो प्रोफेट्स कहो, वो फिर बाद के नीचे नीचे आते हैं थोड़े, उनकी लेवल कम कम होते जाता है, इमाम खलीफा वो सब नीचे नीचे, ऊपर जो है वो मैसेंजर्स है, प्रोफेट्स है, पैगंबर जिसको कहते हैं, पैगंबर पैगंबर, उर्दू में पैगंबर पैगंबर, हिंदी में भी कहा जाता है एंजल्स, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में भी फरिश्ते। तो ये सारे जो लोग हैं, वैसे तो एंजल्स जो है वो एक्चुअली साकार में नहीं है, रूप में, जैसे हम ये सारों की बात कर रहे थे, वो सुपर नेचुरल क्रिएचर्स है। हिंदू धर्म में फिर देवदूत, हम उनकी बात कर रहे हैं जो धरती पर है, पर वो भी है, उनका भी गायन है, हिंदू धर्म में देवदूतों का गायन है, देवदूत आते थे और वहां पर फरिश्ते आते थे, और क्रिश्चियनिटी में एंजल्स अवतरित होते थे। एंजल्स की कितनी बड़ी कैटेगरीज है, हजारों एंजल्स, और सारे एंजल्स को एक एक नाम दिया, एंजल माइकल, एंजल गिब्राइल, एंजल वो, एंजल ये, गार्डियन एंजल, आर्च एंजल, पूरा वो ऐसा सिजरा बना हुआ है, ये एंजल, फिर उसके ये दो, ये तीन, ये वो, हर चीज का एक एक एंजल है। तो ये सारे जो क्रिएचर, ये चलो थोड़े सुपर नेचुरल क्रिएचर्स है, पर हम बात कर रहे हैं यहां नीचे जो रहे। हर धर्म में ऐसी ऊंची आत्माएं हैं जो रुके, जो गए नहीं। फिर हिंदू धर्म में एक जगह पर परमहंस, परमहंस वो कैटेगरी है अवधूत और परमहंस, सन्यासियों की चार पांच कैटेगरी, कुटीचक बुद्रुक, वो जो होते हैं एक जगह रुकते हैं, कोई भटकते हैं, एक है हंस, हंस के ऊपर है परमहंस, और परमहंस के भी ऊपर अवधूत। तो ये अवधूत और परमहंस की जो कैटेगरी है, बहुत ऊपर रहते हैं देहभान से, नीचे बिल्कुल नहीं आते ये लोग। ये आते हैं इसलिए विश्व कल्याण करने के लिए, उनको याद दिलाना पड़ता है आओ नीचे आओ, कुछ खिलाओ उनको, तब वो नीचे आते थे। खाली विश्व कल्याण उनको करना है। ऐसे बहुत सारे अलग 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 अलग, जैसे वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो है, योगानंद ने अपने गुरुओं का वर्णन किया है उसमें, उसके गुरु युक्तेश्वर गिरी, उसके गुरु लहरी महाशय, उसके गुरु वो बाबा जी। अब वो बाबा जी दिखाया है उसमें एक व्यक्ति कि वो तो अभी भी है, और वो अभी भी कितने सारी जनरेशन तक सबका गाइडेंस दे रहे। तो ये बहुत सारे ऐसे गुरु लोग दिखाए हैं जो कि साकार में नहीं रहते, कहीं हिमालय पर है और अचानक मदद करते हैं, कहीं से भी उनकी मदद आ जाती है। तो ये सब दिखाया है। तो ये सब क्या है, अगर इसको देखो हम, तो हमको पता चलेगा ये सब लोग कितनी ज्यादा विश्व कल्याण की इन सब में भावना थी। सभी वो जो भी दिखाए हैं, बहुत हायर स्टेटस था उनके माइंड का, भले उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं था और होना कैसे, होगा भी कैसे, क्योंकि उस समय ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि भगवान के आने का टाइम ही दूसरा है। अब वो सारी जो आत्माओं का वर्णन है वो है कौन, हम ही होंगे, हम ही तो होंगे, नहीं तो कैसे चाणक्य जो दिखाया है कौन होगा वो चाणक्य, जिसके बचपन से लेकर तो अंतिम श्वास तक केवल अखंड भारत का स्वप्न था जिसका, जहां भारत 16 जनपदों में खंड हो चुका था, खंडित हो चुका था, वो एक ही व्यक्ति था जो सोचता था सारा एक हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो देवता धर्म की आत्मा ना हो, थी, जिसने देखा था सारे भारत को एक अखंड देखा था, वही तो कल्पना कर सकता है कि सारा भारत फिर से, नहीं तो वो जनपद अपनी अपनी समस्याओं में गिरे हुए थे, भोग विलास में लगे हुए थे। कोई एकदम कोई ऐसा आ जाए और अखंड भारत का स्वप्न देखे, कोई ऐसा आ जाए और अखंड कर दे भारत को, वो चंद्रगुप्त कौन होगा जो सोचे कि भारत पर एक का शासन हो और समभाव हो, समता हो, ऐसे उच्च विचार उस समय कौन होंगे। ये सब यहीं की आत्माएं हैं कि हर जन्म में बहुत उच्च कोटि के उनके विचार उनमें भरे हुए थे, चाहे विक्रमादित्य, चाहे चंद्रगुप्त, ये सारे अशोक जितने भी आए, हाँ झांसी की रानी, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वाले ये लोग, स्वतंत्रता सेनानी जितने हैं, क्यों, क्या उनको अपने परिवार, बीवी, बच्चे, एक सुखमय जीवन, ये कर सकते थे सारे। सुभाष चंद्र बोस फोर्थ रैंक था सुभाष चंद्र बोस का आईसीएस की एग्जाम में, ही वॉज फोर्थ, चाहे तो बहुत बड़े कलेक्टर बन सकते थे उस समय जब आईएएस नहीं था, पहले आईसीएस होता था, अभी तो आईएएस है, पर आईएएस का ही वो पुराना रूप है आईसीएस, बाबा याद करते हैं ना, मुरलियों में आता है 1948-49 लास्ट बैच है उसकी, उसके बाद में आईएएस चालू हो गया, तो वहां पर वो आईएएस में ही वॉज फोर्थ। अरविंदो, विवेकानंद चाहते थे तो ही वुड हैव, उसके प्रोफेसर ने वर्णन किया विवेकानंद का कि मैंने अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विदेश की इतने सारे प्रोफेसर्स को देखा है, इतने सारे छात्रों को देखा है, बट आई हैव नेवर सीन एनी पर्सन एज इंटेलिजेंट एज नरेंद्र दत्ता, एज नरेंद्र नाथ जैसा कोई भी मैंने नहीं देखा है उस लेवल पे, जबकि वो विवेकानंद था ही नहीं, वो स्टूडेंट है तब, क्योंकि बुद्धि बहुत तीव्र है, कुशाग्र बुद्धि है। उसने वर्णन लिखा है कि आई हैव नॉट सीन एनी स्टूडेंट लाइक दिस। तो ये सारी जो आत्माएं हैं संसार की, इन सब में तीव्र था बिल्कुल वैराग्य कहो या विश्व कल्याण का भाव। तो ये वो आत्माएं हैं, क्या करने वाली, अपनी रचना के दुख के विलाप व तड़पन को देख नहीं सकेंगी, देख नहीं सकते ये, उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा, उन्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आत्माओं को। अगर अभी और देने के लिए क्या चाहिए, फिर दिल भी चाहिए और जमा भी तो चाहिए, दिल है और जमा नहीं है तो, और देने की भावना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर लेने का है खाली माल, आने दो तो कैसे होगा, और दिखावा है, ऊपर से दे रहे पर नीचे से हाथ ऐसा है, आने दो, ऊपर से दे रहे ऊपर से ऐसा नीचे से ऐसा खींच रहे हैं इंटेंशन क्या है, भावना क्या है, वृत्ति क्या है, मनोदशा क्या है, कितनी गहरी बातें हैं सब। तो देने की भावना, देने की इच्छा, वो भी होनी चाहिए, तो ही मास्टर रचयिता बनना कितना बड़ा काम है, पिता बनना है यहाँ पर। एक बाप की कर्तव्य कितने होते हैं, एक होता है, एक व्यक्ति है अकेला अपना घूमता फिरता है, जहां जहां चाहो वहां घूमता है जाता है, और फिर अचानक शादी हो जाती है और फिर बच्चे हो जाते हैं, तो एकदम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। लोग तो शादी करते इसलिए कि बुद्धि ठिकाने आ जाए, ये जो भटकना है इसका ये बंद हो जाए आ? उसके लिए तो की जाती है। तो इसके लिए वो जैसे कोई बाप बन जाता है तो बाप बनने के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसमें। उसको बच्चे को बीमार हुआ तो तुरंत कैसे ये हो जाते हैं, देखा है हमने पेरेंट्स को, ये सारे जो यंग लोग होते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को लेके आते, थोड़ा कुछ हुआ उसको बाप रे इतने एंग्जियस हो जाते, इतने एंग्जियस हो जाते हैं। बड़ों का इतना नहीं होता है, मतलब अगर बच्चे को बुखार है, थोड़ा सा बुखार है, पर इतना एंग्जाइटी, इतना एंग्जाइटी, इतने प्रश्न, बाप रे बाप, ये कहां से आ गए? अभी तक तो ऐसे ही आवारा घूम रहे थे सड़कों में, कोई लेना नहीं था किसी से। ये इतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मैच्योरिटी कहो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ आ गया एकदम से अचानक। सो दिस इज रचयिता बन गया है। वैसे हम भी कौन है? मास्टर रचयिता है। हम भी रचना कर रहे हैं, हमें पता नहीं, शायद हमें देख के किसी का जन्म ही हो रहा है। इतनी ऊंची धारणाएं, शब्द कहो, धारणा कहो, कर्म कहो, जीवन कहो, शैली कहो, किसी ने बस यहाँ आके देख के चले गए तो वो हमारी एक रीति से रचना है सूक्ष्म में। मुख वंशावली, तो हमारे ऐसी हमारी क्या कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे और जो कमाया उसे खाते और खत्म करते रहेंगे तो उन्हें क्या देंगे? अब अपने पोतामेल को देखना है, केवल अभी के समय प्रमाण कौन सा पोतामेल देखना है, क्या क्या गलती की, ये एक चार्ट होता है। आज किस किस को दुख दिया नहीं दिया, बहुत अच्छा। आज किस कौन सी गलती की, कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा। आज नहीं, ये चार्ट है, पर ये बचपन के चार्ट है, बचकाने चार्ट है, ये बचपन के खेल है, बेबी चार्ट ये बेबी चार्ट से तो एक बार बहन ने सुनाया था ना यहाँ पर कि दादी बस कार में जा रहे थे तो एक दादी ने एक बहन को पूछा क्या पुरुषार्थ करती हो, तो उसने कहा था मैं 5 स्वरूपों का अभ्यास करती हूँ। दादी ने कहा क्या बेबी पुरुषार्थ करती हो तुम्हें तो विश्व का कल्याण करना है, मतलब देना 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 देना, ये पुरुषार्थ है। तो क्या क्या गलती की बचपन का पोता मेरे। लेकिन मास्टर रचयिता को अपने कौन से चार्ट चेक करने हैं? आप हर शक्ति को सामने रखते हुए, यह तो पहला डिस्कशन था, सेकंड डिस्कशन, यह पोता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की। अभी जमा के खाते का पोता मेल देखना है, खर्चे को फुल स्टॉप लगाना है, एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, खर्चा क्या करना है उसको कर्टेल, उसको फुल स्टॉप लगाना है। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे क्या? दूसरों को देना वह खर्चा नहीं है, यह तो एक देना फिर लाख पाना है। वह खर्चे के खाते में नहीं है, वह जमा के खाते में है। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति को का प्रयोग करते हो तो वह होता है खर्च। जब कोई भी विघ्न पड़ता है तो उसको समाप्त करने में, तो नहीं करना चाहिए समाप्त, विघ्न आया और उसको समाप्त किया तो बाबा कह रहे हैं ये क्या है, समय खर्च करते हो या तो ज्ञान धन को खर्च करते हो, तो यह सभी खर्च अभी से बचाना पड़े। विश्व के विघ्न, हमें दूसरों के विघ्न विनाश करने हैं, एक दूसरों के विकर्म विनाश करने हैं, दो दूसरों के व्यर्थ को खत्म करना है, दूसरों के निगेटिव को खत्म करना है, जो खुद के ही व्यर्थ में है और खुद के ही निगेटिव में है और खुद के ही विघ्नों में लड़ने हैं। खुद ही अभी पवित्रता में लड़ रहे हैं, खुद ही पवित्रता का खंडन हो रहा है, तो दूसरों को पवित्रता का दान कब देंगे? खुद ही खुद को संभाल रहे हैं तो दूसरों को कब देंगे? लेने का भाव हमारे अंदर बहुत है, सूक्ष्म में, स्थूल वस्तुएं नहीं चाहिए हमको, पर सूक्ष्म, जो उस दिन कहा था कौन सा पल्सर, शर्प शार्प पल्सर, पल्स ने पल्सर ही कर दिया, वो आर्क चेंज कर दिया था, रिमेम्बरेंस कर दिया था ना उसको, द शार्प पल्सर, वो सारी चीजें है, 14 चीजें जो हम लेना चाहते हैं वो तो है, पर एक दूसरा भी है कि हम फिर भी कुछ ना कुछ दूसरा लेना चाहते हैं। देना कम है अगर देखा जाए तो सबका ही। तो बाबा यहां कह रहे हैं कि खर्च कम करना है, ठीक है, इसके तीन तल है, एक शारीरिक, एक मानसिक, एक आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तीन तलों पर खर्चा कम करना है, या ये उसके पहले ये सोचना है कि ये तीन तलों पर कहां कहां खर्चा होता है। जैसे शारीरिक तल पर कहां खर्चा हो रहा है, शारीरिक एनर्जी कहां खर्च हो रही है, शारीरिक फिजिकल एनर्जी को हम कहां अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं, घूमने फिरने में, ज्यादा बोलने में, दूसरा, तीसरा खाने, ज्यादा खाने पीने, खाने पीने में नहीं, खाना पीना जरूरी है ज्यादा खाने में, क्योंकि जितना ज्यादा खाएंगे उतना शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और फिजिकल एनर्जी कहां जा रही है, टीवी, टीवी देखने में, बरबर, और ज्यादा सोने में, सोने में नहीं, ज्यादा सोने में, अतिरिक्त सोने में, अतिरिक्त खाने में, हर चीज की अति में दोष है। तो शारीरिक अर्थ पूछ रहा है, शारीरिक क्या, व्यर्थ वो बोल दिया, बोल नहीं, वो मानसिक में आएगा। अच्छा तो वो हो गया, पहला बताया बोलना, दूसरा बताया अधिक खाना, अधिक बोलना, अधिक खाना, अधिक पीना, अधिक सोना, अधिक घूमना फिरना, अधिक स्वयं को थकाना। जो सेवा कई लोग कर सकते हैं उसमें जबरदस्ती करना, मतलब हम जरूरी नहीं है हम जाए, मतलब ना भी जाए तो भी चल जाएगा, हम अपने आप को क्यों थकाए शारीरिक रीति से। और बहुत महत्वपूर्ण रह गया है दो तीन, हाँ वो हो गया, वो उसका एग्जाम्पल हो गया। नहीं, संबंध निभाना नहीं, संबंध निभाना मानसिक, शारीरिक पूछ रहे, शारीरिक, शारीरिक, हाँ मतलब वो उसके वही घूमना फिरना में आ गया, या फिर उसके वजह से जाना पड़ रहा है सूक्ष्म का, चलो ठीक है। और शारीरिक शक्ति कहाँ जाती है, बीमारियों से लड़ने में, बीमारियों का हमने ही आह्वान किया है, पहले ही पता था ये खाने से गड़बड़ होगा, परंतु रोक नहीं पाए, पता नहीं मिलेगा कि नहीं बाद में कभी, ये सोचकर कि साल में एक बार तो बनता है। ऐसे बहुत सारे अच्छे सुहावने संकल्प हमारे पास है, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिला है, जितना चाहिए उतना ज्यादा ही ले लिया, फिर बीमार पड़े और अब शरीर को संभालो, या जो भी बीमारियां है उनसे युद्ध करने में, शारीरिक बीमारियों से युद्ध करने में, या फिर एक्सरसाइज न करके बीमारियों का आह्वान करने में, परहेज न करके बीमारियों का आह्वान करने में। वो बताया था ना एक बार, अब हम जितना खाते हैं उससे आधा पेट हमारा भरता है और आधा डॉक्टर का भरता है, हम इतने रहमदिल है कि हम नहीं चाहते कि डॉक्टर वो भूखा रहे, इसके लिए हम इतना खाते हैं कि जिससे केवल आधा हमारा भरता है और आधा डॉक्टरों का पेट भरता है। ठीक है ना विनोद भाई, बरबा बोला ना तो शारीरिक बीमारियों से लड़ने में, शारीरिक अस्वस्थता में लड़ने में, शारीरिक कमजोरी से लड़ने में तो वो हमारी ऊर्जा ये सब चीजों में भी जा रही है। जबकि तीन तल है हमारे ऊर्जा के, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा, हमें तीनों ही ऊर्जा को कंजर्व करना है। ऐसे कई लोग, अच्छी बात है, पर कई लोग ऐसे ही मतलब लंबा यहां से नीचे जाना, कोई विशेष कारण नहीं है, जाते ही रहते हैं ऐसे ही, पर एक रीति से अच्छा भी है वो, एकदम बैठने से, हाँ वो वैसा ठीक है, नहीं रोज 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 या हफ्ते में दो दिन, चलो वो शारीरिक रीति से फिर भी हम ना नहीं कहेंगे, अच्छा ही वो एकदम से, पर टाइम वेस्ट एक रीति से उसमें भी तो है ना, मतलब प्राप्ति कुछ नहीं है। हाँ वॉकिंग हमें बहुत अच्छी चीज है, परंतु वो वॉकिंग मल्टीटास्किंग हो, वॉकिंग खाली ऐसे जा रहे देखते हुए, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो, यहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ एक्सीडेंट, किसने किया एक्सीडेंट, कितने लोग ये हुआ, मतलब ये सर रास्ता टूटा है, कब टूटा, कितने लोग गाड़ी गए वापस गए, क्या हुआ, ठीक क्यों नहीं हुआ, फिर बारिश आ गई, मतलब व्यर्थ। अगर वॉक कर रहे हैं तो वॉक के साथ में चिंतन यदि जुड़ा नहीं है तो मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। शारीरिक रीति से भले आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, परंतु वो जो वॉकिंग जिसके साथ में चिंतन जुड़ा नहीं है, वॉक करना है ना, तो ये ले लो फिर, ये 108 का गार्लैंड याद करके, ये पूरा नीचे पहुंचते तक ये पूरा याद होना चाहिए, ये 15 दिन में सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पी से कितने, आठ, एस से कितने, ए से कितने, बी से कितने, पूरे याद। और योग में एक पकड़ लो इसमें से, सबके मोबाइल में आ गया है, एच ले लिया, एच खाली आज एच से बाबा के साथ सारे संबंध याद करने हैं। जैसे आज सुबह हमने अमृत वेला पी से किया साथ, कि वो फिजिशियन है, साइकियाट्रिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, फिलोसोफर है, फिलोसोफर स्टोन है वो, नहीं वो तो नहीं आएगा, तो हिंदी, हिंदी भी तो लिखा है, हिंदी भी तो लिखा है, गुजराती लिखा है, अपनी भाषा में चेंज करो उसको, कोई भी। ये तो उदाहरण दिया एक, कि कोई भी चीज जो है बुद्धि उसमें बिजी हो। और लास्ट है बुढ़ापा, बुढ़ापा में बुढ़ापे को भी हम आमंत्रण करते हैं। बुढ़ापे का संबंध केवल शरीर से नहीं है, मानसिक बुढ़ापा, शरीर से तो बुढ़ापा है ही, पर वो भी, उसको भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉकिंग नहीं कर रहे तो भी बुढ़ापा आ जाता है, वो सारी चीजें नहीं करते जो करनी चाहिए, जल्दी घुटने ये हो रहा है, जल्दी बैक एक चालू हो जाता है, दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, ये दर्द, वो दर्द, गर्दन दर्द, थकान, वीकनेस। तो ये है शारीरिक तल। इस शारीरिक तल को ठीक करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, एनर्जी के लिए एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये दो चीजें, व्यायाम, व्यायाम अर्थात विस्तार, व्यायाम शब्द का अर्थ है विस्तार करना, और व्यायाम के अपोजिट है संकुचन, जहां कॉन्ट्रैक्शन होगा वहां पर बीमारी है, जहां विस्तार होगा ये सारे ज्वाइंट स्ट्रेचिंग होगा वहां पर ठीक रहेगा सब। तो एक तो ये, दूसरा तल है मानसिक। मानसिक में कहां हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, सोचने में, वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, बीती, उसमें दोनों चीजें आ गया, मानसिक में बौद्धिक और भावना, भावनात्मक मतलब किसी के साथ इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। एक व्यक्ति है जिससे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसके लिए योगी के लिए बहुत खतरनाक चीज है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, उसको निष्ठुरी बनना पड़ेगा। अगर इमोशनल इन्वॉल्व हो गया ना, उस व्यक्ति के साथ संबंध जुड़ जाता है, फिर बस उसको कुछ हुआ इधर कुछ होता है, उसको कुछ हुआ इधर कुछ हुआ, वो दुखी हम दुखी, उसको किसी ने कुछ बोला क्यों बोला हम दुखी, उसको किसी, उसका अपमान हो गया अलग का हमारा अपमान हुआ, उसके साथ किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया आगे ऐसा क्यों हुआ उसके साथ क्यों, तो हमें दुख होगा, उधर गड़बड़, उधर उधर कुछ भी दर्द तो इधर दर्द। हाँ मतलब ये जो लगा इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, जहां इमोशनल अटैचमेंट है इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है वहां पे, हमें तो इमोशनली स्टेबल होना है, क्योंकि योगी जीवन के लिए इमोशंस बहुत स्टेबल चाहिए। अगर मोह है किसी में और जुड़े हुए और फंसे हुए है, और एक ही व्यक्ति है बस उससे जुड़े हुए, तो वो व्यक्ति खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, चाहे कितना भी ज्ञान युक्त संबंध हो, कितना भी ज्ञान युक्त, ये बंधन है, हम अलग ही हो सबसे, कोई लेना देना नहीं है, आए गए अच्छा है, बाय बाय बस। हाँ झील, हर चीज में झील चाहिए, दो व्यक्तियों के बीच में अगर वो बीच में नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट है, तो कहां से योग, बैठे और उसी का सोच रहे, उसी के बारे में चिंतन, उसी की सोच, उसी के विचार, उसी के भावना, उसी के संकल्प। हम बात कर रहे अशरीर स्थिति की, हम बात कर रहे ज्वालामुखी योग की, हम बात कर रहे मास्टर रचयिता की, हम बात कर रहे कैचिंग पावर की, संसार की दुखी आत्माओं को दुख से मुक्त करने की। ये अवस्था बुद्धों की अवस्था है, तीर्थंकरों की अवस्था है, मसीहों की अवस्था है, पैगंबरों की अवस्था है, इमाम शंकराचार्य, इन इन अवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं। और वो जो है वो सामान्य जन है, हम बुद्ध है, वो सामान्य जन है, वो बुद्ध अलग है सबसे, हम महावीर है, वो संसार से प्रभावित नहीं होता है, उसको अलग ही रहना पड़ता है। अगर वो बुद्ध कोई किसी स्त्री से प्रेम हो जाए तो क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे बताओ, वो सब छोड़ दिया, वो ही फंस गया किसी में तो क्या कहेंगे। इतनी सारी मीरा सब छोड़ दिया और फॉर एग्जाम्पल किसी में बुद्धि चली गई उसकी, कोई दूसरा भक्त, बहुत कृष्ण भक्त है दूसरा वो भी, फिर जैसे दिखाया राबिया, राबिया बहुत ऊंची संत है, पर वो जो हसन उसके साथ होता है ना, उसकी भी एक बार बुद्धि चली जाती है उसमें। जबकि हसन अपने आप में बहुत बड़ा मिस्टिक है, बहुत बड़ा सूफी संत है, पर वो भी कहता है कि हम दोनों मिलके थोड़े चलेंगे साथ साथ पर वो ऐसा उसको फटकारती है कि उसके होश आ जाते हैं उसको वो भी माया है, वो एकदम उसको फिर पता चलता है मैं ये क्या सोच रहा था। वो कोई साधारण नहीं है, वो भी ऊंचाई है, फिर भी ये आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। योगियों को योगी माया योगियों से आएगी, ज्ञानियों को माया ज्ञानियों से आएगी, तपस्वियों का आकर्षण तपस्वियों में होगा, त्यागियों का आकर्षण भोगियों में नहीं होता है, त्यागियों में होता है, और जो उससे भी बड़ा त्यागी हो सकते हैं और ज्यादा होगा। और त्यागी त्यागी की आसक्ति वो भी तो अटैचमेंट है। दूसरा तल है मानसिक, तीसरा तल है आध्यात्मिक, उसमें क्या करना है, जिसमें एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, आध्यात्मिक एनर्जी कंजर्व करना है, क्या करेंगे? मानसिक तल पर है वो सारा, आध्यात्मिक के लिए शक्ति, जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी वेस्ट कहां होती है वो हम पूछ रहे हैं। हाँ, विघ्न आता है तो उसमें एनर्जी चली जाती है, और स्पिरिचुअल एनर्जी कहां हमारी जाती है, तेजी से नष्ट होती है, एक तो विकार से नष्ट होती है स्पिरिचुअल एनर्जी, दृष्टि और हाथ मिलाने से। कई लोग जो होते हैं ना हाथ नहीं मिलाते, अगर बहुत सारे निगेटिव लोग हैं तो इसके लिए भारत वाले बस ये करके पूरा करो उसको, हैंडशेक करना निगेटिव आत्माओं के साथ, अर्थात एनर्जी उधर से ट्रांसफर होती है। आंखों में आंखें मिलाना किसी के साथ लंबा समय तक, देखते रहना ऐसे आंखों में आंखें डाल के बात करना, तो वो एनर्जी उधर से इधर जाती है। अगर वो आदमी बहुत निगेटिव है, विकारी है, विकर्मी है, तो इन आत्माओं के द्वारा एनर्जी प्रभावित होती है, इधर ट्रांसफर होती है। इसके लिए यहां ब्लॉक करना होता है एनर्जी, या कोई हम पर साइकिक अटैक करे, साइकिक अटैक्स कहा जाता है इसे, मानसिक अटैक, कोई भी निगेटिव एनर्जी का अटैक, ब्लैक एनर्जी डाले, वहां पर हमें अपने आप का ऑरा बना के रखना है, क्योंकि वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को नष्ट करता है। कुछ चीजें हैं हमें गेन करनी है, जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी गेन करने के लिए किसी व्यक्ति का जो बहुत ऊंची स्थिति में आध्यात्मिक, उसका फोटो सामने रख के उसकी आंखों से एनर्जी लेना, ये संसार में किया जाता है। अपने गुरु का फोटो रखते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, ये हमारे सामने स्वयं भगवान है, या तो सीधा उसको देखो या उसका फोटो, और उससे वो एनर्जी लेना। एक तो ये एनर्जी, हाँ फोटो से भी एनर्जी आती है, हर स्क्रीन से भी एनर्जी आती है। कई बार सूरज भाई जी को पूछा था ना, बाबा को दूर से स्क्रीन पे देखना, सामने स्क्रीन है तो वही पावर आएगी। हाँ आएगी, आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो एनर्जी लेना, और जहां एनर्जी हमारी कम हो जाती है, मतलब खत्म होने की संभावना है, जैसे खत्म कहां होगी, लौकिक वातावरण में, लौकिकता में, हाँ तो साकार अनुभव मतलब वो एनर्जी, उस व्यक्ति का ऊंचा जो जीवन है, वो एनर्जी लेना मतलब एक तरफ तो एनर्जी को बढ़ाना और दूसरी तरफ एनर्जी को लीक नहीं होने देना, लीकेज। फिजिक फोटो है फिजिकल, परंतु हम फिजिकल को देख ही नहीं रहे, हम इमेजिन कर रहे हैं वो व्यक्ति वहां पर है, इट इज दैट ह्यूमन बीइंग इन फ्लैश एंड ब्लड प्रेजेंट देयर। वो व्यक्ति फ्लैश और ब्लड मतलब साकार रूप में जैसे जीवंत खड़ा है, और उससे वो एनर्जी जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी आगे से जाती है, हाथों से जाती है। हम वो भी ठीक है, हमारी एनर्जी लेवल अगर बहुत ज्यादा है तो कुछ नहीं होगा, पर हम ही झगड़ लड़ रहे हैं, संघर्षरत है, और नीचे के एनर्जी लेवल के लोगों के साथ में हाथ बहुत मिला रहे हैं तो एनर्जी नीचे जाती है। इसके लिए हाथ मिलाना, आंखों से आंखें डाल के देखना, लौकिक स्थानों पर ज्यादा समय बिताना, ट्रैफिक, ऑफिस और ये सारी जो है ना एनर्जी को खींचता है ये हमारे। इसलिए पॉजिटिव इसमें और एक चीज है कि स्पिरिचुअली हाई कैलिबर जिनका है उन लोगों का संग करना, स्पिरिचुअली हायर वाइब्रेशंस जहां है वहां जाना, ऐसे स्थानों पर ज्यादा जाना कि जहां पर बहुत हाई एनर्जी है स्पिरिचुअलिटी की, वो स्थानों पर जाना, ऐसे लोगों के साथ जाना जिनका स्पिरिचुअल वेवलेंथ तरंगे जो है वो बहुत ऊंची है, स्पिरिचुअल प्रतिभा जो है वो ऊंची है, वहां जाना, ये दो आंखें, तीसरा, और एनर्जी न जाए उसके लिए लौकिक लोगों का, बाबा कहते हैं घर में जाते हैं मित्र संबंधियों का मुंह देखते हैं और सोडा वाटर। एनर्जी जो है ना, क्योंकि हम स्पिरिचुअल माइंडेड पीपल है, स्पिरिचुअल माइंडेड पीपल की एनर्जी जो है वो बहुत ऊंची रहनी चाहिए, नीची नहीं जानी चाहिए। तो यहां ये बात कही, खर्च नहीं करना है। पहली बात की थी रचता, हम रचता है तो रचता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, और दूसरी कहा है खर्च, फिजिकल कहां जा रही है, मेंटल कहां जा रही है, और आध्यात्मिक हमारी शक्ति कहां खर्च हो रही है, इसको प्रिजर्व करना कि कैसे करना है, कंजर्व संरक्षण कैसे करना है, और जो खर्च हो रही है उसको कैसे, लीकेज कहां है वो खुद ही चेक करना है। क्या कहा, संबंध, वो कहां संबंधों में भी जाती है, इसके लिए व्यर्थ के संबंध बनाना, ये सारे सोशल मीडिया क्या है, संबंध ही क्रिएट कर रहे हैं, एक रीति से नए नए संबंध क्रिएट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ओपीडी में फोटो निकाल के जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर कुछ महीनों के बाद वो फोटो भेजते हैं, मैं ये हूं, और फिर कन्वर्सेशन चालू करने का प्रयत्न करते हैं, एक संबंध बनाने का, एक भी जवाब दे दिया फिर छोड़ते ही नहीं, अगर दे दिया कुछ भी, यहां सब हो रहा है पर मुझे खुद अलग से भेजो तुम, मतलब ये एक संबंध बना रहे हैं, बहुत गहरी माया है ये। किसी ने एक बार मैसेज भेजा था कि वो जो ग्रुप है ना उसमें बहुत सारा कुछ कुछ आते रहता है, कुछ एक काम करो आप, वो जो क्लास होता है ना अपने नंबर से मुझे स्पेशल रोज भेजा करो। ये सब माया है, कुछ जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है किसको, क्या करना है, क्यों व्यक्ति से जोड़ना है कि स्वयं को, व्यक्ति से जोड़ना अर्थात फंसना, गिरना। एक हमने क्लास कराया था एक बार ज्ञान सरोवर में, तो एक बहन, कोई बहन या माता कहीं की होगी, वो लीगल कॉन्फ्रेंस में आई थी, तो वो बाद में ना हॉस्पिटल में आई, तो उसको क्लास वो अच्छा लगा साइलेंस का, तो उसको वहां पे किसी ने बोला आपको मिलना है क्या उनसे, बोले जरूरत ही नहीं है, क्यों मिलना है, क्या करूं मिलके, नो नीड, बैठे वो बाहर शिवानंद भाई से मिलके चले गए, जरूरत नहीं है, क्यों क्यों मिलना है, क्योंकि व्यक्ति में थोड़ी ना जुड़ना है, व्यक्ति तो चैनल है खाली, एनर्जी तो ऊपर से आ रही है वो जो भी है। तो ये जो लगाव वाली टेंडेंसी है ना व्यक्तियों में फंसना, ये बहुत खतरनाक है ब्राह्मणों के लिए, व्यक्ति का कोई लेना देना ही नहीं है, वो जो है निमित्त है, लोग आत्मा है सारी, दादियां दादियों में फंस, क्यों, वो क्या कह रहे हैं, वो खुद क्या कहते हैं, उंगली उनकी ऊपर है, उन्होंने किसी दादी ने आज तक नहीं कहा मुझ में फंसो, मेरा फोटो रखो, कहा क्या किसने आज तक, कभी नहीं, किसी ने नहीं। हमारी टेंडेंसी है व्यक्ति, जो भक्ति मार्ग की पुरानी आदत है ना वो यहां चलती है, व्यक्ति चाहिए, कोई कहते आप मेरे हमेशा के टीचर बन जाओ, व्हाट, कौन सा टीचर, टीचर बैठा है ऊपर, बस एक बार कॉल करो अगली बार से नहीं बस, क्योंकि वो भी हम उनका नुकसान कर रहे हैं एक्चुअली, हम यदि अपने में फंसाते हैं अर्थात उनका हम नुकसान कर रहे हैं, इसके लिए हम खाली एक ही बार फोन उठाते हैं, अगली बार फोन नहीं उठाते किसी, क्योंकि उसके लिए नहीं, वो खुद हम उसको कमजोर नहीं बनाना चाहते, अपने निर्णय खुद ले, अपने डिसीजन खुद ले, ज्ञान का चिंतन खुद करे, निर्भर ना हो जाए किसी आत्मा पर, क्योंकि एक बार अगर दे दिया तो वो बार बार वही 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 वही। हाँ हेल्थ इश्यू इज डिफरेंट, ये तो जीवन के इश्यूज है, उसके लिए किसी पर क्यों निर्भर होना है, अपने निर्णय खुद करो, अपने इंडिपेंडेंट हो जाओ, दुख है बीमारी है जो है खुद सॉल्व करो, गिरो और उठो, कोई क्यों चाहिए आपको किसी का, हाँ वही पर्सन, ज्यादा अनुभव है विनोद भाई को। अभी अभी एक फोन आया, सुबह से लेके कंटिन्यूस फोन आ रहा है, अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट, हम बिजी थे आईसीयू वार्ड ओपीडी ये सब चालू था, शाम को जब फोन उठाया तो बहन जी माता जी कौन थे पता नहीं, अर्जेंट बात करनी है, अर्जेंट बिल्कुल अभी की अभी बात करनी है, अभी डिसीजन लेना है, क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ऐसा है कि इतना कर्ज ले लिया, इतना कर्ज ले लिया, अभी कोई योग का प्रयोग ऐसा बताओ कि जिससे पूरा कर्ज उतर जाए, जब ये कर्जा ले रहे थे तब बाबा याद था क्या? श्रीमत है, किसी से लेन देन नहीं करो। इधर इधर वाले फिर तब वो जब ले रहे थे तब भूल गए थे बाबा को, अभी याद आया बाबा, अभी स्पिरिचुअलिटी याद आई। तो ये वो तो दिया, जो भी है दिया, पर हम बता रहे हैं ये भी निर्भर हो रहे हैं ना। जब कोई अगर हम फोन कर रहे वो नहीं उठा रहा है, या उसके फोन होगा ही नहीं उसके पास, कहीं और रखा है, तो हाँ एक ने तो ऐसे फोन किया कि फोन नहीं उठा, मुझे डांटना चालू कर दिया, मतलब क्यों नहीं उठा रहे इसलिए, और कितना टाइम दे सकते हो? मैंने कहा 5 मिनट हूं इधर, 5 मिनट नहीं आधा घंटा हो देना, तो नहीं तो मैं तो रख रही हूं और धड़ाम। मतलब प्रश्न करता, प्रश्न पूछने के बाद उपवास आ रहे और उसको ही सिखा रहे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम परिवार है इसलिए तो कह रहा हूं, इसके लिए सब समान है वो दूसरी बात है, पर हम ये बात नहीं कर रहे। हम कह रहे निर्भर नहीं होना है, अवलंबन नहीं होना चाहिए, व्यक्तियों में नहीं फंसना है, ये नहीं होना चाहिए, कट करो ये ज्ञान चुपचाप। किसने वो आई एम अ वॉइस विदाउट फॉर्म, आवाज वो फॉर्म नहीं आना चाहिए, केवल आवाज और बाबा का ये ज्ञान, बस यही समझो बाबा का ज्ञान है, जो भी सारे यज्ञ का सारा ही। व्यक्ति में फंसना और जिनके प्रति सबसे ज्यादा प्रेम है और सबसे ज्यादा आदर है उनसे सबसे दूर रहना चाहिए, सबसे ज्यादा जिनसे प्यार है, जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत प्रेरणा भर दी, जिनको जीवन को देखकर, उन व्यक्तियों से तो सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए। नहीं नहीं क्योंकि क्या होता है, उनके पास जाते ही फिर उनके अवगुण दिखाई देने लगते हैं, जितना नजदीक जाते हैं फिर पता चलता है ये भी ऐसा, और फिर जो सम्मान था, ठीक है बहुत सम्मान है हमारा, हम मिले कभी, हाँ दूरी आती है, इसलिए जब मिले तो बहुत अच्छा, हम गए साल में मिले, एक दो बार मिल लिए, कभी बात कर लिया, हो गया खत्म। पर ये जो अटैचमेंट है ना, कि कल आपने ये सॉल्यूशन दिया था, आज फिर फोन, आज फिर मैसेज, अब फिर मुझे रोज आप मैसेज करो, मुझे अपनी प्रॉब्लम में पूछूंगी तो आप मुझे सॉल्व करो, आप मुझे ये दो, ये व्यक्तियों में फंसना है, हम निमित्त बन रहे हैं उसके लिए। इसके लिए उधर थोड़ा दिल टूटा तो चलेगा, पर आदमी खुद से खड़ा होगा। ओम शांति। करना पड़ेगा, नहीं हाँ वो तो देंगे, सॉल्यूशन दे सकते हैं, परंतु उनको वो अगर हम में फंस जाए, जैसे आप आज आपके पास कोई आया, आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया, पूरा खुल के उससे पूछा, बातें इतनी सारी पूछी और पूछी, उसने बताई, आपने बताई, पूरा उसका पता दिया उसने सारा, और उसने एक्चुअली आपसे पूछने से पहले ये सारी चीजें 10 और लोगों से पूछ चुकी है। वो आपके पास पहली बार कोई भी नहीं आता है, ये वो ही लोग होते हैं जो पूछने का ही काम करते हैं सबसे। और अभी आपने पूरा बताया, अभी नेक्स्ट डे और फोन, फिर आपने बताया, फिर तीसरे दिन फोन, फिर मैसेज, फिर एक नया संबंध जुड़ गया, फिर उठाया क्यों नहीं, अब फिर अब उत्तर क्यों नहीं दिया, फिर अब नाराजगी, फिर रूठना, फिर रूसना, फिर बंधन, ये सब बहुत ही सूक्ष्म बंधन चालू हो जाता है। और जो हम उनको बता रहे हैं उनको सब पता ही है पहले से, ऐसा कुछ है कि जो उनको पता नहीं? सब पता है, वो तो खाली मतलब ऐसे ही पता है, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओम शांति।